बढ़ जाते हैं संतान,
कहिए आज मैं जीवन भर मैं सत्संग किया मैंने, तू आज की लड़का या लड़की तू हमसे भी अधिक समझती है या समझता है जो मैंने आज तक नहीं समझा। एक लड़का था अपने पिता के पास में दुकान पर बैठता था। पिताजी रोज शाम को कथा में चल, जैसे यहां पर है ना, और शाम को 4 बजे से कथा होते, वो 4 बजे आ जा, बेटे को कहते बेटा तू यही रहना, तो बेटा रहता था। कुछ दिन के बाद में पिताजी ने कहा बेटा मैं बंबई जा रहा हूं, 2 दिन में 3 दिन में लौटूंगा। तो कहा जा ठीक है जाइए, किंतु एक बात करना, वहां पर मत जाना यहां कथा हो रही है। और लड़का सोचता था जी पिताजी कहां जाते हैं, बड़े प्रसन्न होकर के आते हैं जाते हैं, मैं देखूंगा जी कहां जाते हैं। तो वो पहले से समझ गया जी ये लड़का जरूर जाएगा, इसलिए कहा जी वहां पर मत जाना नहीं तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। तो और कौतूहल इसको है, क्यों बुद्धि भ्रष्ट हो जरा देखूं तो वो जब चले गए तो ये कथा जा रही, जीव मात्र ही भगवान का दास है और दासी है, जो भगवान का भजन नहीं किया उनको दंड ही संसार में भोगना पड़ता है, जो सहज रूप में भगवान का नाम करता हुआ भगवान का भक्ति करता है इस जगत को छोड़ करके दुख में संसार को भगवान के चरणों में पहुंच जाता है, अब उसको कोमल हृदय बात लग गई, भगवान का नाम करने लग गया। अब उसका पिताजी हटाता है, देखा जो दुकान बंद है वो है नहीं, 4 बज गए हैं, अजी कहाँ गया, घर गया, देखा जी घर में नहीं, फिर शाम हुई तो बच्चा आया तो कहाँ गया था, तो मैं गया था कथा सुनने के लिए। कथा सुनने के लिए तुमको मना किया जी मत जाना, तो पिताजी मैंने क्या दोष किया, उसमें क्या दोष है, देखो आज मैं 80 वर्ष का बूढ़ा हो गया, मैं कथा में जाता हूँ और वहां जाकर के सुनता हूँ और फिर जब आता हूँ तो वहीं पर छोड़ करके आता हूँ, तुम आशा भी परिपक्व नहीं हुआ है? देखो ना अब झोली लगा दिया, ये क्या रंग लिया यहाँ, और ये लकड़ी की कहाँ से माला बांध दिया, तुम्हारी बुद्धि करा करो कच्ची है ना, अरे तुमको मछली जैसा होना चाहिए, रहती है कीचड़ में किंतु कीचड़ उसको नहीं लगती, तुम हरी कथा सुनने जाओ ये दोष नहीं है, ये तो मनुष्य मात्र का कर्तव्य है, किंतु उनकी कथाओं को जो सुनो वहां पर छोड़ करके और यहां पर चले जाओ, ये बुद्धिमत्ता का कार्य है, ये परिपक्वता है। तो इस तरह से कहते हैं कि ये हमारे गुरु जी हैं, ये संडामर्क हैं, इनके संग से ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तो वो भी जाएंगे हम भी जाएंगे मरेंगे, इसलिए मैं ये बुद्धि कैसे होगी जो ऐसे निर्मल साधु हैं भगवान के चरणों में जिनका स्वाभाविक रुचि है, ऐसे व्यक्ति ही उनका संग करने से अवश्य में वो भक्ति होगी, कैसे होगी भक्ति,
भक्तिस्तु
भगवत संगेन परियायते सत्संग कुंभी पूर्व जन्म सुकृति संचित, बिना पूर्व जन्म की सुकृति के साधु संग नहीं होगा और बिना साधु संग के भक्ति नहीं होगा, ये गांठ बात रखिए। इसलिए प्रहलाद महाराज जी ने
उनसे ऐसा कहा,
बातें जो जानने
भक्ति कहां से आई, सब समय दिन रात राम 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 रटते रहते, कृष्ण कृष्ण रटते रहते, भगवान का भजन का ऐसा ही प्रताप है, जो वो हरि और हर जैसे प्रिय बन गए भगवान, उनमें मैं कोई अंतर नहीं देखा, ये कीर्तन ही है ऐसा जो ऐसी शक्ति और सामर्थ्य को देता है। नीलकंठ महादेव जी ने जिस प्रकार से भक्ति के बल से कीर्तन के बल से ऐसी शक्ति प्राप्त की, एक कीर्तन अभी आपको सुनाते हैं, सभी लोग मिलकर के वो कीर्तन
हरी का नाम अंत में निकलाए पर नाम, से बड़ा हरि का नाम प्रभु, से बड़ा प्रभु का नाम, नाम रूप बिन देखे कोड़ी लागे नादा नामी के बांधे खिचियाए से बड़ा हरि का नाम प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम।
मोहिनी भगवान जी का मोहिनी रूप हुआ। शंकर जी जैसे लोग, कामदेव को भस्म करने वाले लोग भी शुद्ध बुद्ध भूल गए। ब्रह्मा जी हैं, उन्होंने अपनी माया से एक सुंदर किशोरी का निर्माण सृष्टि की और देखते ही वो भी अपने हृदय को संभाल नहीं सके। ऐसे ही सर्वत्र देखा जाता है, सबको विजय कर लेना सहज है किंतु मोहिनी देवी को, काम को जीत लेना बड़ा भारी कठिन। केवल मात्र निष्कपट रूप में भगवान का भजन करने वाले इसको दमन कर सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु जी आए हैं, उनके परिकर लोग आए हैं, उनके परिकरों में हरिदास ठाकुर जी बाल्यकाल से ही भगवान नाम करते हैं, 100,000 हरि नाम करते हैं, कभी उच्च स्वर से, कभी मध्यम स्वर से, कभी मन ही मन में करते हैं। 3,00,000 हरि नाम करने में कितना समय लगता होगा, 100,000 हरि नाम किया जाए ना तो अभी कम से कम 4.5 घंटा 5 घंटा लग जाएंगे। प्रेम से ऐसे करें, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम ऐसे यदि करें तो प्रेम के सहित आंखों में आंसुओं की धाबरा हो, कितने समय लेंगे। नैनम गलदा सुधारया बदन गदगद रुद्धया गिरा कुल कर निचितं बपुह कदा तो नाम ग्रहणी भविष्य। तो उसमें 6 घंटा लग जाएगा, तो 3 घंटा में कितना लग गया, 18 घंटा लग गया। लगातार तो वो कर नहीं सकता है, अभी खाना है पीना है, थोड़ा सा नींद भी तो जाएंगे ना। तो हरिदास ठाकुर जी कभी सोते थे, कभी सोते नहीं, कभी आध घंटा सो लिया तो सो लिया, और नहीं तो वो भी नहीं, और खाते थे क्या, कभी चना और कभी वो भी मना, चना भी नहीं, जहाँ जो कुछ मिल गया। और हरिनाम करते हुए नारद की भांति भ्रमण करते हुए दूसरों लोगों को भी इसमें उत्साहित और स्फूर्ति कराते। जब वो महाप्रभु से भेंट नहीं हुई तो अद्वैताचार्य के समीप में शांतिपुर के पास में फुलिया नामक ग्राम है, गंगा के तट पर, वहीं पर एक मिट्टी के अंदर में घर बनाया, छोटी सी कुटिया, और उसमें पहले से ही थी, और उसमें एक बड़ा भारी विषधर सर्प रहता था। उन्होंने कहा कि मैं ग्राम में नहीं रहूंगा, रोज अद्वैताचार्य से मिलूंगा, किंतु मैं गंगा के तट पर यहीं रहूंगा और इसी कंदरे में रहूंगा। लोगों ने कहा कि यहां मत रहना, बड़ा भारी भयंकर विषधर काला सर्प है, काट देगा, आसपास में लोग नहीं आते हैं, तुम इसके कंदरे में तुम मान में तुम यहां पर रहेगा। हरिदास कोई भी बात नहीं, बस उच्च स्वर से हरिनाम करना आरंभ किया और वहीं दरवाजे पर बैठ गए। थोड़े देर के बाद में सर्प निकला और उनको प्रणाम करके फिर चला गया, बस उनके लिए वो कोठरी खाली हो गई। उन्होंने एक तुलसी का बिरवा लिया और वहीं पर ऊंचा सा स्थान करके वहीं पर तुलसी का बिरवा लगा दिया, गंगा जल में स्नान करते, अपतित भाव से 3,00,000 हरिनाम करते, तुलसी की परिक्रमा करते और खाने के लिए जो जितनी जरूरत है बस उतना ही संग्रह करते, कोई कपड़ा भी देते तो नहीं लगते, लंगोटी बस सा और कुछ नहीं, इस प्रकार से हरिनाम करते। हरिनाम करते तो सभी हैं ऐसा करे तो देखो जो भगवान जल्दी से मिल जाएंगे, माया भी उनको नहीं स्पर्श कर सकती है। जिस माया ने ब्रह्मा जी को नचा दिया, शंकर जी को नचा दिया, मोहिनी के पीछे ऐसे दौड़े, उनका वो
क्या
मृगशाला
पहनते हैं ना, व्याघ्रशाला, वो खिसक गया नीचे, दौड़ रहे हैं, पार्वती जी दौड़ी, अरे क्या कर रहे हो, लज्जा नहीं आती, मैं यहाँ हूँ आप हमारे सामने में इसके पीछे दौड़ रहे, कुछ संकट त्रिशूल भी यहाँ से गिर गया और उसके पीछे पीछे भगे, उनकी ऐसी दुर्गति। और ये देखो ये कैसे सहज रूप में माया को जीता, इसी का मैं बतला रहा हूँ। हरिदास ठाकुर जी हरिनाम कर रहे, वहाँ का राजा था, इनका बड़ा देशी था वैष्णवों का, उसने जो मुसलमान को लोग को मुसलमान के बच्चे को लोग इतना आदर करते हैं और हमें आदर नहीं करते, मैं इनकी रखवाली करता हूँ, पालन पोषण करता हूँ, मैं इनका राजा हूँ और हमको ये लोग प्रणाम नहीं करते, और ये मुसलमान और उसको रोज जाते हैं, प्रणाम करते हैं और उसे दुआ मांगते हैं, उसको हो गई चीड़, उसने कहा जैसे इस बदमाश को मैं थोड़ा सा मजा चखाऊंगा। बस देश की अपूर्व लावण्यमती एक वेश्या थी किशोरी, उसको कहा जे तुमको अपना आधा राज्य दे दूंगा या कुछ पैसे दूंगा, तुम इसको लोगों के सामने में निंदित करो, लोगों की दृष्टि में ये गिर जाए, लोग इसको आदर न करें। कहा जे ये तो चुटकी बजाने का काम है, एक सेकंड का, अभी हमको देखा नहीं, नहीं तो ये कभी चला जाएगा कहां, कोई बात नहीं है, बस बन ठन करके ज्योति किशोरी, और वो वहां पर गई, चांदनी छिटक रही, गंगा जी कलकल बह रही, बसंत ऋतु है, ऐसा सुंदर समय, निर्जन स्थल में हरिदास ठाकुर आंखों को बंद करते हुए आंखों से अश्रु धारा बह रही है और हरे कृष्ण 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 भगवान का नाम ले रहे हैं और उनका लीलाओं का स्मरण करते हुए जा रहे हैं। कौन सी लीला? ओहो प्रभु, मैं तो पूर्व जन्म में ब्रह्मा था और उस समय में आपकी लीलाओं को देखने के लिए मैंने कुछ भयंकर अपराध कर दिए, उसको उस समय आपकी लीलाओं को मैं समझ नहीं सका, मैंने सोचा कि अपनी इच्छा से और आपकी लीला को देखूंगा, इसलिए मैंने गौ बछड़ों को और सखाओं को चोरी करके छिपा दिया, देखें ये आप क्या करते हैं, इस तरह से भयंकर अपराध हुए। इस तरह से उन्हीं लीलाओं को स्मरण करते हुए और अपने अपराधों को क्षमा करने के लिए रोते हुए भगवान का स्मरण कर रहे हैं। इतने में 8-9-10 बज गए और इतने में सुंदर किशोरी वेश्या उनके सामने आई, आकर के बड़ी हंसती हुई लजाती हुई उनके सामने में बैठी, उनसे आलाप करने लगी, आलाप करते 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 अपने अर्धांगों को नग्न करके और अपनी काम भावना को प्रकट की, तुम्हारा जैसा युवक अब इस जगत में मैंने नहीं देखा, अपूर्व सुंदर तुम हो और मैं अपूर्व सुंदरी हूँ, मैं चाहती हूँ कि आप हमसे शादी करके दोनों रहें और दोनों मिलकर के भगवान का भजन करेंगे, हम आपकी तुलसी की सेवा कर देंगे, आपके आसन को ठीक कर देंगे, आपके लिए रसोई बना दिया करूँगी, आपकी सब प्रकार से सेवा करूँगी और आप खूब निश्चिंत मन से भगवान का भजन करना। हरिदास ठाकुर जी समझ गए, अहो मैं अभी चला जाऊं, किंतु चला तो जाऊंगा इसे छोड़कर, किंतु भगवान की नाम की महिमा जगत में प्रसारित नहीं होगी, इसलिए मुझको ठहरना चाहिए और उसके चित्त को शुद्ध करना चाहिए, इसको परम भक्त इसको करना है, ऐसा सोच करके उन्होंने कहा जी देवी आप बैठिए पधारिए, आपकी मनोकामना जरूर मैं पूर्ण करूंगा, किंतु मैं 1 करोड़ नाम करने की प्रतिज्ञा कर चुका हूं अपित रूप से, अब वो 1 करोड़ नाम हमारा अब पूर्ण होने ही वाला है, अब अभी अभी हुआ, आप तब तक प्रतीक्षा करें। उसने सोचा जी अब 1 करोड़ नाम इनका जब हो ही गया है, वो क्या नाम जानती है और क्या उसका महत्व जानती है, उसने सोचा जी अब तुरंत ये हमारी बातों में आ गया है, कोई बात नहीं है, बस प्रतीक्षा करती रही, वहां पर हाव भाव दिखाती रही और हरिदास ठाकुर जी अपने आंखों को बंद करके प्रभु के शरणागत हो गए। प्रभु हमारे अंदर में बल नहीं है, यहां पर और सब शंकर जी जैसे लोग महातत्व ज्ञानी और उनका पतन हो गया तो हमारे लिए क्या बात है, प्रभु हमारी रक्षा करें, और ये कह करके हरे कृष्ण, और जैसे पहले कहते थे उसे भी जोरों से हरे कृष्ण 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 हरे हरे।
हरे राम हरे राम 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 हरे हरे।
खूब जोरों के साथ में उच्चारण करते हुए बड़े प्रेम के साथ में करने लगे, उसके कानों में भी जाए हरि नाम का क्या महात्मा, उसके अंदर में प्रवेश। वो नहीं समझी कुछ, सारी रात बीत गई, चार बजने को आया, प्रकाश फैलने लग गया। वो देखती रही, बार बार उठ रही है, बैठ रही है, देख रही है, अब हुआ। कहिए देवी जी, आप थोड़ी देर और सब्र करें, बस थोड़ी देर के ही बात है, अब मेरा नाम संख्या पूर्ण होने वाला ही है। किंतु हो ही नहीं रहा। उसने कहा अच्छा तो मैं फिर शाम को आऊँ, जरूर पधारिए। वो चली गई और ये अपना हरिनाम करते रहे। दूसरे दिन फिर शाम को, दूसरे दिन आई और ये हरिनाम कर रहे हैं। फिर कहा जब भी आपका नाम समाप्त नहीं हुआ, अरे अब थोड़ा सा ही बाकी है, थोड़ी सी देर। ये कहते हुए उसको थोड़ा सा वंचना की, उसकी वंचना नहीं, उस पर कृपा की, अपना वो हरिनाम करते रहे। बीच बीच में वो उसे सहन नहीं होता, प्रतीक्षा करते करते तंग आ जाती, कभी उठ करके चलती, कभी बैठती, कभी कुछ। हरिदास ठाकुर निर्विन्न चित्त से बस हरिनाम करते रहे। थोड़ी देर के बाद में फिर सवेरा हो गया, फिर उसी तरह से वो सवेरे उठ करके चले गई। तीसरा दिन हुआ, आज उसका हृदय निर्मल हो रहा है, एक स्तर पर आया है, अभी तक उसके पहले नहीं हुआ था। अब हरिनाम और जोर से करने लगे, उसके कान में जाने लगा, हृदय निर्मल होने लगा। आधी रात तक होते 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 उनके चरणों में गिर गई एकदम लंबा। प्रभो आप हमें रक्षा कीजिए, मेरा उद्धार करें, मैं आपको पतित बनाने के लिए केवल अर्थ के लोभ से आई थी, आज तक हमने नहीं सुना। जे ऐसी स्थिति में, निर्जन स्थिति में, जहां पर नदी कलरव करके बह रही है, बसंत ऋतु हो और सब प्रकार से निर्जय हो, एक युवक व्यक्ति अपना धैर्य धारण कर सकता हो। आप धन्य हैं, आप परम भगवत भक्त हैं, आप हमारे ऊपर निर्भर हैं। देवी मैं तो पहले ही चला जाता, किंतु केवल आपके लिए यहां पर था, ये हमारा आश्रम आपके लिए सुपुर्द है, ये तुलसी जी आपकी सेवा के लिए हैं। आप अभी घर जाइए, आपने जो कुछ कमाया है, जो कुछ अर्थ में रोजगार किया है इस वेश्यावृत्ति से, सब लोगों को दे आए, बांट आए, कुछ भी मत लेना, केवल एक कपड़ा सफेद मार्किन का पहन करके यहां पर आ जाओ। वेश्या तुरंत चली, घर में पहुंची और पहुंच करके जो कुछ उसने उसके घर में थे, रुपये पैसे स्वर्ण आभूषण कपड़े वस्त्र सब उन्होंने ब्राह्मणों को बुलाया। ब्राह्मण तो पहले से लेने के लिए बैठे हैं, जिसको एक वेश्या छोड़ रही है, और उन्होंने ब्राह्मणों को उन्हें त्याग दिया, जिसको जिसको जो जो लेना है वो सब पहुंच जाए। बस पहुंच गए ब्राह्मण लोग और उनके अपनी बुरी कमाई का जो कुछ था उनको अर्पण करके बड़े प्रसन्न होकर के अपने गमछे में बांध करके लौटा करके चल पड़े। और वो सर्वस्व दे करके केवल एक कपड़ा लिया, घर भी छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ करके, और वो हरिदास ठाकुर के चरणों में आकर के पुनः संस्थान में पड़े। प्रभु आपने जैसा किया था, मैंने सब कुछ शरीर से तो छोड़ा ही, मन से भी मैंने सब कुछ छोड़ दिया, और मन से किसी भी वस्तु में मेरी आसक्ति नहीं। मालूम होता है आपके हरिनाम का श्रवण करने का ही ये फल, सचमुच में भगवान के नामों का फल, विशेष करके संतों के मुख से यदि सुना जाए तो उसका फल और कुछ दूसरा होता है। हम में तो अभी अनर्थ है, अभी हमारा नाम शुद्ध होगा कि नहीं कोई ठीक नहीं है। नाम तीन प्रकार के हैं, एक नाम होता है शुद्ध नाम, स्वरूपगत नाम, दूसरा नाम होता है नामाभास, और तीसरा नाम होता है नामापराध। हम लोग अधिकतर में नामापराध करते हैं, भगवान का नाम लेकर के और सांसारिक वस्तुओं को चाहना ये ठीक नहीं, और भगवान के नाम की निंदा करता है उसमें विश्वास नहीं और नाम करते हैं, ये नामापराध। नामापराध से संपत्ति भोग जितना है सब कुछ मिल जाएगा, और नामाभास से मुक्ति तक हो जाएगी, और शुद्ध नाम से बहुत से फल हैं। जैसे जैसा शुद्ध होता जाएगा, यदि वो वैकुंठीय नाम हुआ नारायण इत्यादि का तो उसको वैकुंठ मिल जाएगा। यदि द्वारकाधीश का भजन करते हैं, बिना द्वारकाधीश के रह नहीं सकते, रुक्मिणी इत्यादि जी का अनुगत है, तो आपको द्वारकाधीश प्रभु मिल जाएंगे। यदि इससे भी आगे बढ़ करके चलेंगे तो नंदा नंदन मिल जाएंगे, सखा के रूप में मिल जाएंगे, और भी आगे बढ़ेंगे तो यशोदा नंदन वात्सल्य रूप में मिल जाएंगे, और भी अधिक चलेंगे तो गोपीनाथ राधाकांत रास विलासी ये सब मिल जाएंगे। ये नाम के अलग अलग महिमाएं, और ये जिस प्रकार का गुरु होगा, जैसा उसका संग होगा, नाम का प्रभाव भी वैसा ही होगा। तो ये नाम के श्रवण से ही वो वेश्या परम साधु बन गई। कहा जी अब ठीक है, तुम यहीं पर बैठो और तीन लाख तुम भी हरि नाम करो हमारे जैसे, भगवत चिंतन करते हुए करना। तुलसी जी हैं, सवेरे गंगा में स्नान करके प्री संध्या स्नान करना, सवेरे दोपहर को और शाम को तुलसी जी का पूजन करना, तुलसी जी की परिक्रमा करना, और परिक्रमा करके इस तुलसी की परिक्रमा और सेवा से ही भगवान विशेष संतुष्ट हो जाते हैं, अपने को बेच देते हैं भगवान। इससे सरल सहज और कोई उपाय, विशेष करके महिलाओं के लिए, महिलाएं तो तपस्या नहीं कर सकती, वेद तो उतना उच्चारण करके और उतना धैर्य और पवित्र होकर के करने में असमर्थ हैं। बहुत सी स्त्रियां हैं उनको वेदों में अधिकार है, ये बात तो ठीक है, किंतु सबके लिए तो संभव नहीं। इसलिए ये हरिनाम में सबका अधिकार है, इसलिए स्त्रियां विशेष करके और कुछ न कर सकें, सुंदर सुंदर रसोई बनाएं, सुंदर सुंदर थालों में सजा करके कृष्ण प्रतीक्षा कर रहे हैं भात रोल में, बस लेकर के उनके यहाँ पर पहुंच जाए, उनको अर्पण कर दे, बस स्वादिष्ट भोजन से ही प्रभु उनके लिए वो कॉन्सेशन दे रखा है, जो इतने से ही हो जाए। तुलसी की सेवा करो, भगवान का नाम करो, अच्छे अच्छे चीज बना करके हमको निवेदन करो, बस इनके लिए ये काफी बहुत अधिक है। मनुष्यों के लिए तो बहुत कड़े कड़े, सब पुरुषों के लिए सब करो। उन्होंने कहा कि तुम तुलसी की सेवा करो और निरंतर हरि नाम करो, तुम्हारे पास में खाने पीने पहनने की बड़ी वस्तुएं आएंगी, लोग बड़े बड़े दर्शन करने के लिए बड़े बड़े महात्मा आएंगे, तुम उसमें से कुछ मत लेना, बस एक बार खाने के लिए वो भी आधा उसमें से ग्रहण कर लेना, कपड़े कुछ मत लेना, बस पहनने के लिए तुम्हारे तन पर है एक और कपड़ा रखना सूखने के लिए, जो ये भीग जाए तो उसको हम पहन लें, और कुछ मत रखना, और उसी चीज का व्यवहार मत करना, और ये बैठ करके हमारे जैसा ये तीन लाख हरि नाम करना। उसको मंत्र दिया, क्या मंत्र दिया उसको बतलाया, देखो यही मंत्र करना, ये कली काल का सबसे श्रेष्ठ मंत्र है, इसको कहते हैं महामंत्र, और जितने भी मंत्र हैं इसके सामने उतने शक्तिशाली नहीं है जितना कि इसमें, जिस स्तर का व्यक्ति होगा उस तरह का ये फल देगा। इसमें हरि कृष्ण और राम तीन के नाम है, साधारण लोग हरि हरे कृष्ण से हरि, कृष्ण से कृष्ण और राम से राम समझते हैं, और ये महामंत्र का विशेष लोग हैं थोड़ा सा अंतर के साथ में, जो शुद्ध विशेष करके हमारे ब्रह्म मध्य गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में, और उनमें भी ऐकांतिक जो गौड़ीय वैष्णव महाप्रभु के जो अनुगत हैं, और उनमें भी जो रूप और रघुनाथ दास गोस्वामी के अनुगत हैं, ये लोग एक विचित्र तरह का रसा स्वादन करते हुए महामंत्र को करते हैं। वहाँ पर हरे कृष्ण से हरे माने ये दो तरह से होगा, हरा से हरे हो जाएगा और नहीं तो हरी से हरे होगा। साधारण लोग उसको हरी से अर्थात एक बार हरि नाम करने से जितने पाप हैं सब दूर हो जाता है, और कमर में गमछा बांधकर और वो भव सागर के में कूद पड़ता है और उसके उस पार छलांग लगा करके चला जाता है, ऐसे हरि नाम के उच्चारण करने से सब पाप प्रकार के जितने पाप हैं भूत भविष्यत वर्तमान के, यहाँ तक महापातक अग्निदाहक और जितने लोगों की हत्या करने वाले अपनी मातृघाती पुत्रघाती पिताघाती इत्यादि भी हों, इन लोगों भी ये लोग भी हरि नाम करने से निरंतर करने से ये लोग पाप से दूर हो जाए। किंतु दूसरा एक अर्थ और है हरि शब्द का, कृष्ण ही हरि हैं, अपने सुंदर रूप से अपने सुंदर वेणुवादन से रूप माधुरी गुण माधुरी लीला माधुरी और वेणु माधुरी, ये किसी और भगवत रूप में नहीं है, वर्ष कृष्ण में भी है। इन चारों माधुरियों के द्वारा चित्त को ऐसे आकर्षण कर लेते हैं, एक बार जो रूप देख लिया इनका, फिर उनकी आंखें दूसरी जगह नहीं जाएगी। एक बार उनका जो स्वर सुन लिया कृष्ण का, कान दूसरे शब्द नहीं सुनेंगे। एक बार उनका मन में जो चिंतन कर लिया, दूसरे चिंतन में जाएगा नहीं। समस्त स्त्रियों को आकर्षण कर लेते हैं, इसलिए उनका नाम हरि है, इसलिए हरि से हरे हुआ, हरे कृष्ण। किंतु और भी ऊंचे जो भक्त हैं, भगवत भक्त हैं, वो लोग इस हरि हरे शब्द से दूसरा ही बोध करते हैं। वो जुगल के उपासक होते हैं, जो लोग सूर्य को मानते हैं और उसकी रश्मियों को नहीं मानते हैं, प्रकाश को नहीं मानते हैं, वो अर्ध कुकुटी न्याय अर्थात मुर्गी का आधा मानते हैं, पूरा नहीं मानते। बिना राधा जी के कृष्ण की उपासना पूरी नहीं होती, बल्कि राधा जी की उपासना करने से कृष्ण की उपासना अपने आप हो जाएगी। किंतु जिस प्रकार से बतलाया है कि राधा राधा माधव अनाथ, केवल माधव माने से अज्ञान, केवल माधव को जो मानते हैं, राधा जी को नहीं मानते, शक्ति को नहीं मानते, वो अज्ञानी है। जिस प्रकार से आतप रहित सूरज नहीं जानी, राधा विहित माधव नहीं मानी, जो लोग हैं जो नहीं जानते हैं, वो लोग केवल कृष्ण की पूजा करते हैं, और जो इस तत्व को जानते हैं, जो बिना राधा के कृष्ण रह नहीं सकते, इसलिए यहाँ पर राधा जी होनी चाहिए। जुगल उपासना का मंत्र है, शास्त्रों में लिखा है, ब्रह्मांड पुराण में लिखा है, और पद्म पुराण में लिखा है, अनंत संहिता में, ब्रह्मांड संग इत्यादि सब जगह लिखा है। ये जुगल मंत्र है किशोर और किशोरी का, किशोरी तो जरूर रहेंगी, तो कैसे रहेंगी? ऐसे जो कृष्ण जो सबसे सुंदर हैं, विश्व ब्रह्मांड को आकर्षण करने वाले हैं अपने रूप से, ऐसे कृष्ण को अपने सुंदर रूप से, सुंदर गुण से, प्रेममयी सेवा से कृष्ण के भी चित्त को आकर्षण कर लेते हैं, कर लेती हैं। वहाँ पर ये हरा शब्द है कृष्ण के चित्त को हरने के कारण, यहाँ पर संबोधन में हो गया, इसलिए हरे कृष्ण माने किशोर और किशोरी जी कृष्ण, इसलिए राधा जी। ये गुप्त चीजें हैं, किंतु मैं आप लोगों को सामने कुछ बतला दिया, बतलाना उचित नहीं है तब भी मैंने बतलाया। और वहां पर राम शब्द का क्या तात्पर्य है? दशरथी राम से वहां पर तात्पर्य नहीं है, वहां पर तात्पर्य क्या है? राधा रमयत इति रामण, राधा रमण हरि, राधा रमण का नाम वहां पर राम है, रमण से होता है राम, जो अनंत कोटि जीवों के, जो समस्त जीवों के अंतर में रमण करते हैं, आनंद देते हैं, उनका नाम है राम। किंतु राधा जी के हृदय में कौन रमण करता है? दशरथी राम करेंगे ना कृष्ण के हृदय में? यहां पर वो मूल अंशी होना चाहिए। राधा जी के हृदय में केवल कृष्ण ही रमण कर सकते हैं, और दूसरा कोई रमण नहीं कर सकता, इसलिए राधा रमण हरि राम वहां पर प्रयुक्त हुआ है ने? इसलिए ये किशोर किशोरी जी के नाम ऐसा कह करके, ऐसा समझ करके, इस प्रकार प्रेम के साथ में जुगल किशोर का मंत्र का ये करना चाहिए। उन्होंने उसके कानों में कहा कि बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। और उसको थोड़ा सा अर्थ की झलक भी दे दी, वो निहाल हो गई, कृतार्थ हो गई। ऐसा गुरु किसी को मिले ना, तब उसका जीवन कृतार्थ हो जाता है। उनके मंत्रों में शब्द ब्रह्म रहता है, शक्ति होती है, जो खुद ही नाम नहीं करता और दूसरों को उपदेश करता है, जो शंकर जी का उपासक है। ओम नमः शिवाय, ओम नमो शिवाय, ऐसा शब्द में करते हैं। जो मरने के बाद में शिव जी में मिल जाने वाले हैं, वो राधा कृष्ण की महिमा क्या समझे? ये सब नहीं समझ सकते। और वो यदि लोगों को ठगने के लिए वो कह देंगे इसे हमारे हाथ से ये शिष्य शिष्या निकल ना जाए, तुम कर देने ये कृष्णाय नमः ये मंत्र जप करना, अथवा कहेंगे आपने राधा कृष्ण का मंत्र नहीं दिया, तो वो कह देंगे क्या ये ऐसा करना, श्रीं क्लीं राधा कृष्णाभ्याम नमः ये मंत्र जपना बस, अपने तो करते नहीं, किंतु देख लिया, या कह देंगे कि वासुदेवाय ओम नमो भगवते वा, भाई मैं तो देवी क्या मैं आराधना नहीं करूंगी मैं, या कहता आप हमको कृष्ण मंत्र दीजिए, तो वो क्या करेंगे, देखे ये हाथ से निकालना जाए चेला, इसलिए कहते हैं कृष्ण शरणम मम वश, इतना ही कहते हैं। ये जो महामंत्र है ये संप्रदाय की ये चीजें हैं, सबके लिए नहीं है, सब संप्रदायों में गुरु ये मंत्र नहीं देता है। राम के संप्रदाय में भी वो राम का ही मंत्र देंगे, ये शिष्य को गुरु नहीं देता जी हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे, निम्बादित्य के संप्रदाय में नहीं देते, रामानुज के संप्रदाय में ये मंत्र नहीं दिया जाता। ये तो एक चेटिया, ये मंत्र तो ब्रह्मा जी से चलता रहा है, नारद जी को दिया, नारद जी ने दिया व्यास को, और उसी तरह से गुरु परंपरा में चैतन्य महाप्रभु जी ने विश्व ब्रह्मांड में इस नाम का प्रचार किया, विशेष करके हरिदास ठाकुर, सब दामोदर राय रामानंद हरिदास ठाकुर और सब लोगों के द्वारा विश्व में इसका प्रचार किया है। इसलिए आप लोग इस भावना से इस मंत्र को करेंगे, देखेंगे जी आप लोगों की सर्वार्थ सिद्धि हो जाएगी, राधा कृष्ण के चरणों में प्रेम। अब वो वेश्या नहीं रही, वेश्या कहना उसके लिए अपराध हो जाएगा, बड़े प्रेम के साथ में तन्मय होकर के हरिनाम करने लग गई, दिन रात करती फुर्सत नहीं मिलता, खाना पीना भूल गई, हरिदास ठाकुर जी की बड़ी कृपा हो। अब थोड़े दिनों के बाद में उसका प्रचार हो गया, जो ही लोग सुने अरे वो कल की वेश्या आज कैसी महानती हो गई, आज परम वैष्णवी हो गई, सब लोग बड़े बड़े दूर से बड़े बड़े साधु संत तपस्वी गृहस्थ सब लोग उसके दर्शन को आने लग गए। कोई कोई हाथ में उपहार, जैसे यहाँ पर आप लोग आते हैं कोई उपहार लेकर के, कोई फल कोई मूल कोई कंद कोई कुछ लेकर के आते हैं, ऐसे ही सभी लोग मान लें कि 1000 आदमी रोज आए और 1000 यदि खरबूज कोई ले आए, तरबूज ले आए, बेल ले आए और संतरा ले आए, तो बतलाओ तो वो क्या करेगी, बस वो सभी लोग ला लें, हजारों हजारों भीड़ लगी रहती साधु। आजकल भी देख लिए कोई भी साधु यदि आ जाएगा और ढकोसला करा करके भी कहेगा ये विभूति दे देता हूँ, तो वहाँ पर जमीन गड्ढी हो जाएगी, हजारों लोग वहाँ पर पहुँचते हैं, तो वैसे ही हजारों लोग लाखों लोग वहाँ पर पहुँचने लगे उपहार के साथ में। किंतु वो क्या करती, उसमें से थोड़ा सा अपने जीवन के ब्याह के लिए निर्वाह के लिए रखती, कपड़े कुछ नहीं रखती, बस दो कपड़े रखती और गंगा में स्नान करती 3 बार और तुलसी की परिक्रमा करती, तुलसी की पूजा करती, आरती करती और इस प्रकार से जीवन करती। कुछ दिनों के बाद में उसकी सिद्धि हुई और भगवान के चरण, ये हरिनाम के इस तरह से यदि कोई हो तब तो माया के जाल से बच सकता है, अन्यथा ब्रह्मा और शंकर को देखा जिन्होंने नचा दिया उंगलियों पर, और यदि हरिनाम का कोई इस प्रकार से आश्रय करे भगवान के चरणों में शरणागत हो तो हरिदास ठाकुर से की तरफ में माया से बच सकता है या बच सकती है। इसलिए इस प्रकार से भगवान के शरणागत होकर के भगवान का भजन कर सकते हैं। एक बात और प्रसंग बतला दूं, गीता में कहा गया चतुर्विधा भजन्ते मां सुकृतनो अर्जुन, अर्थार्थी आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च, 4 प्रकार के लोग भगवान का भजन करते हैं और भगवान को प्राप्त करते हैं। सीधा अर्थ तो सहजते ये ऊपर से मालूम है, किंतु इसका अर्थ ये नहीं है, चतुर्विधा भजन्ते मां सुकृतो अर्जुन, जिनकी सुकृति होती है इन चारों में से कोई 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 बिरले पाता है। सुकृतिशाली होना जरूरी है, सुकृति किसको कहते हैं, भगवान और भक्तों के लिए या भगवत संबंधी वस्तुओं से संबंधित कोई भी कार्य हो तो उसको कहते हैं सुकृति। पुण्य नहीं, पुण्य भगवान की भक्ति नहीं करा सकता है, सुकृति होनी चाहिए। एक बुढ़िया बड़ी कृपण थी, काफी धन संपत्ति है, एक महात्मा जी थे, रोज भिक्षा के लिए जा रहे हैं, तो सब जगह भिक्षा जाते हैं तो कहीं कहीं मिल जाती है, लौट आते हैं भगवान को अर्पण दे करके और वो प्रसाद पा करके हरिनाम करते हैं। कभी कभी उस बुढ़िया के रास्ते से जाते हैं घर के रास्ते से और वहां पर कहते हैं हरी बोल या राधे राधे करते हैं, और बुढ़िया सुनते ही तमक जाती है, क्रोधित हो जाती है और उनको 2-4 गाली सुना देती है, किंतु देती कुछ नहीं। एक दिन सोचा जैसे ये कुछ नहीं देती है, एक बार जरा चल करके और चेष्टा करें। तो वैसे ही चार पांच दिन के बाद में एक दिन फिर गई, फिर गया और उससे फिर राधे राधे। अच्छा तू मानता नहीं है, गाली गलौज करती हुई। और वो पोत रही थी घर को मिट्टी के लगा करके और गोबर और कपड़े में लगा करके, वो पहले का घर था ना, उसको चौका जैसे लगा रही। बस बड़ा क्रोध हुआ, शांत नहीं हो सकी, बस उठाया और फिर बात ऐ पोता मारा। महात्मा जी उसको ग्रहण कर लिया, लेकर के गया जमुना में, उसको मलमल कर धोया, खूब अच्छी तरह से बारीक तरह से धोया और धो करके उसको साफ करके घर में आए, किसी के भक्त से थोड़ा सा घी मांग लिया, उसमें उसको डुबो दिया और उसको बत्ती बनाई, कितनी बत्तियां, और उस बत्ती से ठाकुर जी की आरती उतारी, वहां पर प्रदीप जला दिया। जलाया तो यहाँ, किंतु उसका फल कहाँ पहुंचा उसका कुछ, इनको तो पूरा फल मिला, उसको तो आंशिक फल मिला, मिलना चाहिए ना, उसके कपड़े से ही बत्ती जले। ये महात्माओं का कार्य है, लोगों के यहाँ से जैसी तैसी चीजें लेकर के भगवान की सेवा में, गुरु वैष्णव की सेवा में लगा देते हैं। वो लोग तो समझते हैं कि अपने खाने के लिए ले जा रहा है, किंतु बात ऐसी मत समझना। अब ये हमारे ब्रह्मचारी लोग भी देख रहे हैं, कोई बीए है, कोई एमए है, बड़े बड़े घरों के लड़के हैं, सब छोड़ करके माता पिता धन, कोई कोई बड़ी नौकरी भी छोड़ करके देख रहे हैं। देखने से मुखमंडल आप लोग समझते हो ये साधारण बच्चे नहीं है, ये लड़कियां साधारण नहीं है जिनको देख रहे हैं, बड़े बड़े घरों की राजकुमारियां ये हैं, सबको छोड़ करके भगवान का भजन कर रही हैं। ये लोग जो भिक्षा मांगने जाते हैं ये किस लिए, अपने स्वार्थ के लिए नहीं, इसको भगवान की सेवा में लगा देने से उनकी स्वीकृति है, जैसे इस कहानी के द्वारा। अब वो यहाँ जल रहा है, उसके हृदय में भी प्रदीप जलने लग गया और उसकी स्वीकृति हुई, उसके अंदर उसका बदल गया। दूसरे दिन ये महात्मा उसी रास्ते से गए परीक्षा करने के लिए, देखा जब मैंने बत्ती तो जलाई, इसकी क्या दशा है। वो गए और इस पर राधे राधे कहा, और वो निकल करके घर से आई, कुछ चावल ले आई, कुछ ये लाई और बड़े प्रेम के साथ में उनको देना। अरे बूढ़ी मैया तुम्हारा ऐसे कैसे हो गया, मुझको पता नहीं, ये नहीं कैसे क्या हुआ, मुझको तो कुछ पता नहीं, देखो ऐसे होता है। और यदि कोई प्रेम पूर्वक किसी को संतों को दे और वो संत लेकर के ठाकुर जी को राधा कृष्ण की सेवा में लगाए तो उसका कल्याण नहीं होगा, अवश्य इसको कहते हैं सुकृति। ऐसे पूर्व जन्म में जिनकी सुकृति है, साधुओं का संग हुआ है, वो लोग यदि इन चार प्रकार के हों तो उनको झटका लगने से, कष्ट होने से उनका चित्त शुद्ध हो जाता है और वो लोग फिर भक्ति में लग जाते हैं। कैसे, चतुर्विधा, पहले वह आर्तो, आर्त हुआ गजेंद्र, गजेंद्र पूर्व जन्म में क्या था, इंद्रदिम्न राजा, घर बार छोड़ आया जुआ वंश राजा, और छोड़ करके आया, उसको चाहिए था जो घर में रह करके गृहस्थ धर्म का पालन करता, अपनी स्त्री के साथ रहा, क्षत्रिय रक्षित जाति का क्षत्रिय था, रहता दान पुण्य करता और स्त्री के साथ में घर में रह करके भजन करता, उसके लिए उपयुक्त था। तो उसने ये सब छोड़ करके और जंगल में आकर के भगवान की जटा जूत्र लगा लिया, बना लिया और कपड़े वैसे गेरू पहन लिए और वहाँ पर बैठ करके चित्त को संयम करके कुछ भगवान की आराधना कर रहा था। इतने में अगस्त जी आए, मैंने देखा जी देखो तो ये बेवकूफ क्षत्रिय जाति में उत्पन्न होकर के सुकृति का कार्य नहीं कर करके, एक बार मानो भगवान को पा बना बैठना पड़ता, पा लेगा ये, इसलिए सब धर्म कर्म छोड़ करके यहाँ पर बैठ गया, यहाँ पूजा कर रहा है, इसलिए अभी संभव। तो वो ध्यान अभी लगाया नहीं था, वो चित्त को संयम करके और भगवान का कुछ चिंतन कर रहा था, उनका पूजन कर रहा था। अगस्त ऋषि ने देखा ये थे तो ठीक नहीं किया, ये बिना अवसर आए हुए और ऐसा कर दिया, बस अब इन समय तू हाथी के समान है, सब कुछ कर्म धर्म छोड़ करके और यहाँ पर बैठ करके हाथी जैसा बैठा है और हमारा अभिवादन भी नहीं किया, तुम जानता नहीं है, वो तो भक्त थे, बस अभी संपात दिया। किस लिए अभी संपात दिया, बड़े करुणाशील होते हैं जिनकी भगवत भक्तों पर, जिस पर करुणा होती है, जैसे नारद जी बिगड़ करके जमलार्जुन को अभी संपात, माने कोटि कोटि जन्म में जो पाता है एक जन्म में पा जाए। इसने देखा अगस्त जी ने काम बहुत अच्छा किया, सब कुछ छोड़ करके भगवान की आराधना कर रहा है, काम तो ठीक नहीं है, किंतु दूसरे लोग इसका अनुकरण न करने लगे, बिना अधिकार के आकर के तपस्वी जटाजूट बना करके रख जाए और बच्चों को छोड़ दे, पिता माता को छोड़ करके और यहाँ पर रह जाए, लगे जाओ हाथी बन जाओ। इसलिए अगस्त ऋषि जी की कुछ कृपा थी और कुछ संस्कार था, सुकृति थी, इसलिए मरते समय में इसकी क्या गति हुई, इसको याद आई प्रभु को। सबको याद नहीं आती मरते समय में, मैं मरी मैं मरा, हा दैया हा मैया करेंगे, नाम नहीं आएगा, किंतु वो पूर्व जन्म की सुकृति थी, इसीलिए भगवान का स्मरण हुआ, उन्होंने सब कुछ छोड़ करके एक कमल लिया और भगवान के चरणों में अर्पण कर दिया। अब मुझे जीवन मरने का ग्लानी नहीं है, हे प्रभु अब चाहे मरूं चाहे जीवित रहूं, मैंने आपको चरणों में छोड़ दिया। साथ ही साथ भगवान तो दूर नहीं थे, आकर के उसकी रक्षा की। उसी तरह से आकर जिज्ञासु, जिज्ञासु मैंने सनक सनंदन सनात ये सोनों का दी ऋषि, उन्होंने कलयुग से बचने के लिए कुछ जानना चाहा। सुत गोस्वामी मिले, उन्होंने भगवान की कथाएं सुनी, पूर्व जन्म की इस जन्म की सुकृति थी साधुओं का संग, और ये ज्ञानी चतुसन ज्ञानी है, ज्ञान का विकार छोड़ दिया साधु संतों के प्रभाव से, सुकृति थी, ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में थे, इन्होंने कृपा की इसलिए इनको भगवान मिले। और अर्थात ही ध्रुव जी, इनका भी संस्कार था, नारद जी से संग हुआ, इसलिए उस चीज को छोड़ करके जो राज्य की आकांक्षा थी छोड़ दिया, इसलिए उनको भगवान की भक्ति मिली। नहीं तो इन चारों के रहते हुए यदि हृदय में कषाय रहेगा तो उसे भगवान नहीं मिलेंगे, उनको छोड़ना पड़ेगा और सुकृति होनी चाहिए, इसमें एक रहस्य है। इस प्रकार से यह समझ करके भगवान का भजन करना चाहिए, भगवान के भजन में भी नाम कीर्तन ही और स्मरण ही सबसे श्रेष्ठ है। आज की कथा का यही सार है, अभी कीर्तन और आरती होने के बाद कथा समाप्त होगी, कल बलि महाराज जी की और बामन देव की कथा, इसके बाद में नौवें स्कंद की कथा होगी, शाम को यदि संभव हो तो दशम स्कंद की कथा आरती। अभी आप लोग एक कीर्तन करके
मिरंधस्य ज्ञानंजन शलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। महाबदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नम्ने गौरतिशे गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तदभक्ताय नमो। यं प्राव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोभिनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमा। भक्त्या विहीनाय पराधलक्ष्यै चित्त्वाश्च कामादितरंग मध्ये कृपामयीं त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणा। तवैवास्मि न जीवामि तया विना इति विज्ञाय राधे तन्नय मां चर। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयन्ति।
हरि गुरु वैष्णवों की कृपा से आज हमारा चार दिन श्रीमद् भागवत संपन्न हुआ है। आज पंचम दिवस आरंभ हो रहा है। उधर से हम लोगों का करीब करीब सातवां स्कंद समाप्त हुआ है, आठवां भी हो जाता किंतु आज के लिए रख दिया गया, तो आठ स्कंद उधर हो गए हैं। अब हम लोग नौवें स्कंद के पश्चात में चार दिन दशम स्कंद के लिए रखा है, चार दिन पांच दिन, जिसमें थोड़ा से विस्तृत रूप में कृष्ण के लीलाओं का वर्णन किया गया। अभी कल हम लोग समुद्र मंथन और मोहिनी अवतार और उनके द्वारा अमृत का बंटन इत्यादि का वर्णन हम लोगों ने किया। इन कथाओं के पीछे भी बड़े बड़े रहस्य हैं। ऊपर से ये आख्यायिका साधारण रूप में दिख रही है किंतु गंभीर रूप से विचार करने पर बहुत से विशेष तत्व की उपलब्धि होती है। अब जैसे देखिए शंकर तत्व, शंकर जी को जब विष निकला इससे